अब आगे देखेंगे आयत नंबर 7 से। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी बात करने के बाद दोबारा किस्से की तरफ बात लेके आई जाती है, और कुराने पाक का किसी भी चीज़ को पेश करने का यही खूबसूरत अंदाज होता है कि बजाय इसके कि सिर्फ एक कहानी के तौर पे बात शुरू हो और एंड तक चलती जाए, बल्कि बीच में नसीहत और अमल की बातें। और इसी चीज़ को हमने पीछे भी महसूस किया था, कुरान पाक के किसी चीज़ को बयान करने और फिक्शन के नाम पर चीज़ों को पेश करने में यही फ़र्क होता है कि इसमें सबक और नसीहत है। आयत 7 को देखिएगा, लकद कान नफ़ी यूसुफ व इख्वती ही आयातुलिसाइलीन। यकीनन यूसुफ और आपके भाइयों के किस्से में बहुत सी निशानियां हैं पूछने वालों के लिए। कौन थे पूछने वाले? साइलीन, नंबर एक मुशरिकीन मक्का, जिन्होंने यहूद के उकसाने पर सवाल पूछा। और साइलीन से मुराद यहाँ दूसरी अगर तफसीर देखी जाए तो इससे मुराद यूसुफ के भाई भी हैं। यानी दोनों तरह की बात सही ली जा सकती है कि जो भी लोग इस सवाल को पूछते हैं, यहूद मदीना के यहूद हों या मुशरिकीने मक्का हों या कोई भी ऐसा हो, वो इससे निशानियाँ ले सकता है। आयात से यहाँ क्या मुराद है? लेसन्स, मॉरल्स, आयतन की जमा। दुनियावी कहानियाँ पढ़ने वाले खाने पीने नमाज से अमूमन दूर हो जाते हैं, उस वक्त में नमाजों को भी खो देते हैं, लेकिन कुरान का सबक सुनाना, कुरान का कहानी सुनाना जो है वो नसीहत वाला है। और इससे ये पता चलता है कि किसी चीज़ को सिर्फ लज्जत की खातिर नहीं सुनना और देखना चाहिए, ये सोचिए कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। फी यूसुफ व इख्वती ही, यूसुफ और उनके भाइयों के बारे में, तो यूसुफ तो हम समझ चुके, इख्वती ही कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाई थे और एक उनका सगा भाई था, जैसे कि हमने सबक के शुरू में बात की कि माओ से फ़र्क थे। और यहाँ एक बहुत बुनियादी नुक्ता समझ आता है कि बाप चाहे एक ही हो, लेकिन माओं का फ़र्क औलादों में झलकता है। इसको आपने अपनी अमली ज़िंदगी में भी कई जगह देखा होगा। एक ही शख्स की एक से ज़्यादा जब शादियाँ होती हैं तो पैदा होने वाले बच्चे अपनी माँ का परताव होते हैं। अगर एक बीवी महज़ब थी, डिसेंट थी, आहिस्ता बात करती थी, तो उसके बच्चों में ये रंग दिखेगा। इसके बरक्स दूसरी तरफ दूसरी बात भी जो नहीं छुपती। और ये भाई जो थे, इनमें से 10 जो थे ख़ास तौर पे, उस वक़्त तक नबी नहीं बने थे, लेकिन बाद में फिर अल्लाह ने इनको भी, रिवायात में आता है कि नबुवत के मनसब पे फ़ाइज़ कर दिया था। पीछे भी इन्होंने ये बात कही थी, यहाँ फिर इसका तذकरा आ रहा है कि जब इस बात का तذकरा किया जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का किस्सा फ़र्क क्यों था? अगली बात से उनके आपको अंदाज से फर्क समझ लगेगा। आयत नंबर 8 को देखिएगा, इस कालू ल यूसुफ व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना मिन्ना व नहनु उस्बा। जब उन्होंने कहा कि यूसुफ और इसका भाई हमारे वालिद को हमसे ज्यादा महबूब हैं, जबकि हम एक ताकतवर जमात हैं। यहाँ से टोन देखिए, वहां क्या था? या बती ओ मेरे अब्बा जी, फिर इन्नी, फिर रुकते, फिर आई तो हम ली साजिदीन। टोन से ही पता चल रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के अंदर आजजी भी थी और उनका बात करने का अंदाज बड़ा खूबसूरत था। जबकि यहाँ जरा भाइयों की आपस की कन्वर्सेशन देखिए, जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने किरदार और अखलाक के साथ बाप की ज्यादा तवज्जो लेते हैं, और वैसे भी आप लोग इंसानी फितरत जानते हैं कि जिन बच्चों की माँ फौत हो गई हो तो दूसरे तो उससे प्यार करते सो करते हैं, बाप के लिए भी वो बच्चे ज्यादा प्यारे हो जाते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हमने इनको माँ का भी प्यार देना है। तो इस नाते से अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम या उनके भाई बिन यामीन से हज़रत याकूब ज़्यादा प्यार करते भी थे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाइयों का बात करने का अंदाज़ देखिए, अहब्बु इला अबीना, वो ज़्यादा प्यारे हैं हमारे बाप को, मिन्ना हमारी निस्बत, क्या कर रहे हैं? तकाबुल। हर नए बच्चे के पैदा होने पर पहला बच्चा अमूमन ऐसे ही बिहेव करता है। आपने देखा होगा जिस घर में सिर्फ एक ही बच्चा और सब उसको तवज्जो दें, फिर उसी घर में एक दूसरा बच्चा आ जाए, सेम माँ से बाप से, लेकिन पहला बच्चा जेलस फील करता है। बच्चों के मिजाज में कंजूसी होती है, अपनी ज़ात बड़ी होती है, जल्दी रोते हैं तो जल्दी खुश भी हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल कंजूसी तो बच्चों में होती है, छोटे होते हैं ना तो हर चीज़ उनकी छोटी होती है। और साथ ही साथ देखिए कि वजह अपने बड़े होने की, क्या कहते हैं, वनाहन उस्बा, हम एक ताकतवर जमात है। उस पर का लफ्ज़ जो है ना, 10 या 10 से ज़्यादा मर्दों की जमात के लिए आता है। फौज की फौज जैसे हम कहें या लश्कर, और साथ ही आगे देखिए कितना तौहीन अमेज जुमला उनके मुंह से निकलता है, इन अबाना लफी दलाल मुबीन, यकीनन हमारे वालिद सरीह गलती पर हैं। ये लफ्ज़ बता रहे हैं कि बाप के बारे में उनका रवैया क्या है। पहले तो बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, बाप के खिलाफ भाई बैठ के आपस में चाहे दुख सुख के नाम पे कर रहे हो, फिर दूसरी बात आप देखिए कि दलाल मुबीन करके बता रहे हैं कि बाप नऊज़ुबिल्लाह भटक गए। और हकीकत यह है कि मुसलमान औलादें माँ बाप के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकती। अल्लाह ताला तो सूरह बनी इसराइल में कहते हैं कि वाख़्फ़िज़ लहुमा जनाहा, अपने दोनों बाजू उनके आगे इज्जत के साथ झुका दो। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ बच्चों के बातचीत करने के अंदाज में ऐसी बातें होती हैं, तो ये वो चीज़ है कि जो बच्चों को सोचनी चाहिए। कभी भी आपको भी, इवन मैंने देखा है कि बड़े होने के बाद भी ये गुमान रहता है कि मेरे से प्यार कम है, मेरी बहन से ज़्यादा है, मुझे कम मिलता है उसको ज़्यादा, तो फौरन सोचें कि मेरा अपने माँ बाप के बारे में क्या एटीट्यूड है। किसी की भी बुराई करना तो बुरी बात सो होगी, जो माँ बाप की बुराई होती है वो बुरी बात है। देखा क्या गया कि जब माँ बाप कुछ देने के काबिल नहीं रहते बेचारे, बल्कि अब इसी का इंतज़ार है कि कौन सा बच्चा उनको ले जाए और अब ये महीना किधर रहना है और अब किसकी बारी है, तो बच्चे आपस में बैठते हैं जब, या बेटियां बेटियां, तो फिर वो माओं की या बापों की ये बातें करते हैं। ये महरूमी की बात है। माँ बाप जो होते हैं ये नेकियों की पिटारी होते हैं, जो इंसान को दुआएँ देते हैं और कुछ ना भी दे सकें, जो दुआएँ उनसे मिलती हैं उसी से तो रिस्क मिलता है, उसी से तो नेमतें मिलती हैं। तो लिहाजा पहले से खुद ही सोचा और फिर उसी सोच को लेकर किस नतीजे पे पहुंचे, शैतान देखिए किस तरह ट्रैप करता है। अगर आप इसको पिछली आयत से मिलाएंगे ना तो कैसे होगा, आयत 8-9 को मिलाइएगा, इन अबाना लफी दलाल मुबीन निक्तलु यूसुफ अवित्रहुह, चुनाचे कत्ल कर दो यूसुफ को या इसको फेंक दो अर्दन यहलु लकुम वजहु अबीकुम, किसी दूर के इलाके में, ताकि तुम्हारे वालिद की तवज्जो तुम्हारी तरफ हो जाए। हल क्या निकाला है बाप की मोहब्बत लेने का, कि उसकी मोहब्बत उससे दूर कर दो। बहुत सारे ना समझ लोग मोहब्बतें लेने का यही तरीका इख्तियार करते हैं, और जिन बच्चियों की तरबियत दीन के मुताबिक ना की जाए ससुराल में जाकर, वो भी अमूमन अपने शौहर की तवज्जो लेने के लिए यही हल पेश करती हैं कि शौहर को उसके प्यारों से दूर कर दो ताकि वह तुम्हारा और प्यारा हो जाए। हालांकि ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए मोहब्बतों के मुकाबले में नफ़रतें और नफ़रतों के मुकाबले में मोहब्बत कभी नहीं मिलेगी। मोहब्बत देंगे ना तो मोहब्बत मिलेगी। ये इंतहाई भोंडा हल है जो अक्सर ख़वातीन किसी भी रूप में पेश करती हैं ताकि हमें दूसरों की मोहब्बत मिले। आपकी बहू अगर आपके घर आ गई है, आपके बेटे से वो क्या लेगी, बीवी बनेगी, उसकी माँ तो नहीं बनेगी। और अगर आप किसी की बहू बन के गई हैं तो आपने उसकी बीवी बनना है, माँ तो नहीं बनना। तो उस गरीब की माँ या उसकी बीवी को आपसे जुदा क्यों करती हैं? बस दफ़ा औरतें मजबूत होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं, तो वो मर्दों को मुश्किल में डाल देती हैं। तो हम सबको अपने अमल को देखना चाहिए कि कहीं हम लोगों को या अपने करीबियों को उनके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ तो नहीं करते। और बस दफ़ा तो शादी के फौरन बाद ही ये मसले शुरू हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी अपनी सोच सीधी रखें तो हर वो रिश्ता जो उधर था वो इधर भी मौजूद है। तो लिहाजा ये उनका हसद का बढ़ा हुआ जज्बा था कि बाप की मोहब्बत लेने का वे एक ही तरीका कि इसको ख़त्म कर दो। लिहाजा क्या होगा, जगह खाली बन जाएगी और रह गया इतना बड़ा जुर्म, उक्तलु यूसुफ, यूसुफ को कत्ल करने का जुर्म, या उसको कुएं में या ज़मीन में दूर फेंकने का जुर्म। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, वतकून मिन बादिही कौमन सालिहीन, फिर इसके बाद नेक बन जाना। इससे क्या पता चलता है, बहुत कुछ पता चल रहा है। पहली बात देखिए, छोटी मुश्किल को बड़ी मुश्किल में ढाल रहे हैं। कैसा हल सोचा है उन्होंने बाप की मोहब्बत लेने का। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम अपने मसाइल का हल ऐसे ही सोचते हैं, थोड़ा सा इख्तलाफ़ राय बर्दाश्त नहीं करते और बाद में बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़नी पड़ती हैं। शौहर बीवी का आपस का झगड़ा हो या ससुराल से आपका झगड़ा हो, हर वक्त ये सोचिए जो आज के हालात हैं, जो तरीक़ेकार मैं इख्तियार करने लगी हूँ, क्या ये पहले से अब बेहतर हो जाएंगे हालात या बुरे हो जाएंगे। और बाज़ दफ़ा छोटे मसलों की जवाब में हम बड़ी बड़ी जंगें मोल ले लेते हैं। फिर दूसरी बात आप देखिए कि भाई के कत्ल की बात कर रहे हैं, इकतलू, इससे भी कोई भड़के शैतान किसी के हाथों में आ सकता है कि जो उसको गलत से गलत काम करने पर माइल करता है। और क्या वाकई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों में फ़र्क करते थे? नहीं करते थे। पैगंबर कैसे फ़र्क कर सकते हैं? वो तो दूसरों को अदल और इंसाफ की दावत देते हैं। होता पता क्या है कि हर बच्चा अपने रवैये के मुताबिक प्यार लेता है। ये भी आप सब जानते होंगे, आपके भी बच्चे हैं। अदब, तरीके, मैनर्स, एटिकेट्स ही बच्चों कैसे होते हैं, जवान बच्चों के भी, छोटों के भी। कुछ बच्चे बचपन से इतने केयरिंग होते हैं, हर वक्त माँ के पीछे फिरते हैं, जो माँ कहती है वो करते हैं। और कुछ बिल्कुल शुरू से ज़िद्दी और अखड़ मिजाज होते हैं, और अगर तरबियत भी ऊपर ज़रा सी और ही नुमाया करने वाली हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा ख़राबी होती है। तो इसलिए हज़रत याकूब बिल्कुल फ़र्क नहीं करने वाले थे, लेकिन बच्चों को ऐसा महसूस होता था। और याद रखिए, जो औलाद जितनी नाफरमान होगी ना, उतना उसको ये ज़्यादा ख्याल होगा कि मुझसे प्यार कम किया जाता है और दूसरों से ज़्यादा। होती तो हकीकत ही है, ये नहीं सोचते कि हमसे प्यार क्यों नहीं किया जाता। सब लोग हमें ही क्यों बुरा कहते हैं? इसलिए कि उनके करतूत और उनके वसफ अच्छे नहीं होते। फिर दूसरी बात देखिए कि सिर्फ माँ बाप की ज़ाहरी तज़ीम नहीं करनी चाहिए, उनकी बात भी माननी चाहिए। ये जो बात कह रहे हैं ना, अबू तो बिल्कुल ही बुद्धू बन गए और अबू तो बिल्कुल गाफिलीन है और जाहिल है, तो ऐसे बाज़ दफ़ा बच्चे, जवान होते हुए बच्चे अपने माँ बाप के लिए भी बोलते हैं, अम्मी को तो बिल्कुल नहीं पता, शी स्टूपिड और लाइक दिस। और इंग्लिश में पता भी नहीं चलता, गाली दे दें, उर्दू में दें तो पता भी चल जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को नोट करना चाहिए। शुरू से अपने आप को ऐसे रखिए कि आपके बच्चे अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करें तो आप उसको रोकें। फिर आप देखिए कि बच्चों को दुआएं जो मिलती हैं ना अच्छे अखलाक की वजह से, उससे भी उनका नसीब संवरता है। ऐसे काम करने वाले बच्चे माँ बाप से दुआएं तो क्या लेंगे, अगर उनकी बददुआ से बच गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप लिखें ना हकूक लफ्ज़, तो उसके नीचे हकूक लिख दें। आइन और हा के फ़र्क से बिल्कुल मफहूम बदल जाता है। हकूकुल वालिदैन क्या होते हैं? माँ बाप के हकूक। और हकूकुल वालिदैन होती है माँ बाप की नाफरमानी। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को शुरू से नोट करें। अपने बच्चों की कभी भी मॉरल या बिहेवियर प्रॉब्लम को ओवरलुक ना करें। बच्चे माँ से कैसे बोलते हैं, बाप से कैसे बोलते हैं, आपस में कैसे बोलते हैं। फिर आप देखिए, इनका ये ख्याल है कि हम उस्वा हैं, क्या बात है, बहुत ज़्यादा हैं, आप इसलिए प्यार करें। हकीकी तौर पे बल्कि क्या देखा गया ह्यूमन नेचर, जो बच्चा जितना कमज़ोर होता है ना, माँ को उससे ज़्यादा प्यार होता है। जिस बच्चे के पास महरूमी होगी, माँ का प्यारा होता है। हैंडीकैप बच्चों को ज़रा देखिए, माएँ प्यार करती हैं। ये क्या कहते हैं, हम ज़्यादा हैं तो हमसे प्यार किया जाए, ये भी एक नेगेटिव सोच है। और यहाँ से एक छोटी सी बात भी बता दूँ कि यही 10 भाई बाद में इनसे बनी इसराइल के वो 10 कबीले निकले थे। 2 तो यूसुफ और बिन्यामीन से, जो आज भाइयों का किरदार था ना, वही कल पूरी बनी इसराइल का किरदार बना। कत्ल तो इनके बाएं हाथ का खेल है, हसद इनके खेल है। ये सारे रवैये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाए जा रहे हैं कि इन्होंने जो हालात किए थे वो कल इनके साथ भी होने वाले हैं। और ख़ास तौर पे आप देखिए, तकून मिन बादी कौमन सालेहीन, इससे क्या पता चलता है? गुनाह आज और तौबा कल। कई लोग गलत कामों को फॉर ए गुड कॉज का नाम दे देते हैं। आज भी लोग यही करते हैं, कहते कुछ नहीं होता, बाद में हो जाएंगे, बूढ़े होकर तौबा कर लेंगे, हज कर लेंगे, उमरा कर लेंगे। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, चलो बस एक बार और कर लो। ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि गुनाह छोड़ना है ना, तो उसको आज ही छोड़ना होगा। अरबी जबान में नफ्स को दूध पीते बच्चे से तशबीह दी जाती है। कहते हैं कि अगर बच्चे का दूध छुड़ाना है ना, तो बस एकदम छुड़ा दो, और अगर बच्चा रोए फिर दूध दूध दे दो, फिर रोए फिर दो चुस्कियाँ दे दो, तो कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसी तरह गुनाह छुड़वाना है तो एकदम छोड़ दो, थोड़ा चखने से और भूख आ जाती है। तो गुनाहों को छोड़ना है तो एकदम छोड़ना पड़ेगा, ना कि ये कहें कि तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन। आज लोग बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स करते हैं, क्यों? फॉर ए गुड कॉज, जलसले के लोगों की मदद के लिए, दिस एंड दैट। नफ्स की पैरवी तो जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन तौबा बाद में करेंगे, ये नफ्स का शर होता है। बात तो कहते हैं आज गुनाह कर लो कल तौबा कर लेंगे, चलो अब रमज़ान आने वाले हैं, बहुत नेकियां करनी है, अब कुछ गुनाह कर लूँ, तो ये चीज़ जो है इंसान के लिए बहुत जहरे कातिल है। और यहाँ से उनके ज़मीर की कशमकश भी दिख रही है कि गुनाह का बहरहाल एक बोझ है। इंसान सोचता तो है ना कि अपने भाई को कत्ल करना चाह रहे हो, मलामत कर रहे हैं, लेकिन हसद का जज्बा इतना गालिब हुआ कि इंसान को पीछे कर दिया। सूरत मायदा के आयत 30 में भी हम पढ़ चुके हैं ना, हाबील और काबील का किस्सा। फतवत लहू नफ्सहु क़त्ल अखी, के काबिल के नफ्स ने उसको आमादा कर ही लिया कि अपने भाई को कत्ल करे। तो अंदर से आवाज उठती है, लोग नहीं मानते तो वो दब जाती है। अब कन्वर्सेशन का अगला हिस्सा आयत 10। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف, कहा ये कहने वाले ने यूसुफ को कत्ल मत करो। ये कौन था? ज्यादा रवायतों में आता है यहूदा था, सबसे बड़ा भाई, बाज रुबैल का नाम भी लेते हैं, दूसरा भाई था, यानी बहुत बुरों में कम बुरा। उसने कहा कि देखो तुम ला तक्तुलु यूसुफ, यूसुफ को ना मारो, क्योंकि उनको लगा कि ये गलत बात होगी, भाई का कत्ल बुरी बात है। हाँ, बाकी रहेगी बात इससे जान छुड़ानी है, तो वालकूहु फी गयाबतिल जुब्बी, और डालो इसको किसी पुराने कुएं में या कुएं की गहराई में, होगा क्या, यल्तकितहु बादुस सय्यारा, ले जाएगा उठाकर इसको कोई काफिला। ये जो दो लफ्ज़ है ना, गयाबात, गयाबत कहते हैं वो चीज़ जो दूसरे को अपने अंदर छुपा ले, और जुब कहते हैं पुराना कुआं जिसकी दीवारें ना हों। कब्र को भी गयाबा कहते हैं अरबी में, क्योंकि लाश को छुपा लेती है। वीरान कुआं जुब है, पुराने कुएं में क्यों डालो कि पानी तो नहीं होगा, तो बैठा रहेगा, कभी कोई पानी लेने आएगा तो उसको उठा लेगा। यल्तकित का लफ्ज़ जो है लुकता से है, गिरी पड़ी चीज़ को कहते हैं, कोई अगवा कर ले, कोई पकड़ ले, कम अज़ कम मारेंगे तो नहीं उसको। सैयारा का लफ्ज़ सैयार से है, वो जमात जो सफ़र के लिए रास्ता तय करती हो, सैर इसका रूट होगा, ज़मीन में चलना। सैयार कहते हैं बहुत चलने वाले को, और सैयारा कहते हैं काफ़िले को। इसने मशरा ये दिया कि कत्ल ना करो, बल्कि इसको उठा लो और फेंक दो। पुराने ज़माने में ऐसे कुएं आम होते थे, पानी की सतह के करीब इनकी दीवार में ताकचे से बने होते थे, जैसे छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, और काफ़िलों के लिए बनाई जाती थी। तो कहा कि किसी ऐसी जगह पर इसको जाके बिठाओ, कम अज़ कम इसकी जान तो बच जाएगी। इन कुन तुम फ़ाइलिन, अगर तुम वाकई कुछ करने वाले हो। और देखिए, भाइयों का मकसद तो था ना कि यूसुफ को रास्ते से हटा दें, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये ठीक है। कहने लगे अच्छा ठीक है, अब ये प्लान हो गया। प्लान क्या हुआ? भाई के कत्ल का। लेकिन बाप को क्या कह रहे हैं? आयत 11। कालू या अबाना, हाय हमारे अब्बा जान। वहाँ क्या था? या अबाती, मेरे अब्बा। ये कहते हैं हम, इससे भी मोहब्बत का अंदाज़ कम दिखता है। मालक लाता मन्ना अला यूसुफ, क्या हो गया आपको कि आप हम पर यूसुफ के मामले में भरोसा ही नहीं करते? हालांकि वह इन लहू लना से खून, हम तो इसके बड़े खैर ख्वाह। इसको कहते हैं अटैकिंग स्टाइल, सारा कुछ छोड़ दिया। अल्लाह ने, अब देखिए यहाँ सारी तफसीलात छोड़ के ब्राह रास्त बातें सामने रखी, और इस सूरत में आपको कई जगह अपने तसव्वुर से भी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। इसके बरक्स जब फिक्शन होता है तो उसमें मेलोडी बहुत होती है, चीज़ों को जोड़ा जाता है। इधर मकसद सामने रखा जा रहा है, इतने बुरे प्लान करके गए हैं, दिल में चूके खुद ही चोर है। तो बाप को कह रहे हैं माँ लगा, ये है उकसाने का अंदाज। हाँ जी, आप तो हम पर भरोसा ही नहीं करते। इसको इल्ज़ामी अंदाज कहते हैं, दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं ताकि अगला अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए और आपकी बात मानने लगे। आप करते ही नहीं, आपको हम पे भरोसा ही नहीं, हमें तो आपने कुछ समझा ही नहीं, और हालांकि इन लहू लना से हुन, हम तो इसके बड़े खैर ख्वाह। ज़रा देखिए लफ्ज़ों से जो खैर ख्वाही निकल रही है। क्या रिश्तेदारियों में अमूमन हम भी ऐसे ही डिप्लोमेटिक जुमले नहीं बोलते? बड़ी खुशी हुई और दिल से अंदर आग लगी होती है कि ये रिश्ता हो क्यों गया। ऊपर से कहते हैं बड़ा मज़ा आया, अंदर से दिल जल रहा होता है। तो ये लोगों की पुरानी आदत है कि ज़ुबान पे कुछ, दिल पे कुछ, और इस तरह की बातें बोलकर वो ये सोचते हैं कि अगले को हमारी बात का यकीन आ जाएगा। हालांकि यकीन नहीं आता, बल्कि बात और बुरी लगती है। अच्छा ठीक है, करें क्या? आई 12। अरसिल हु माना, हमारे साथ इसको कल भेजिए। कब? गदई, कल। अरसिल हु माना गदई यरता व यलअब, कल ज़रा इसे हमारे साथ भेजिए। व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और यकीनन हम इसकी हिफाजत करने वाले। कोई अल्लाह के सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कह रहे हैं कि इसको हमारे साथ भेज दे। पहले बाप को प्रवोक किया, इजाज़त मांगी, इजाज़त मिलने की बात ज़रा करीब हुई तो कहा ज़रा इसको हमारे साथ भेजें, हम ज़रा खाएँगे पियेंगे, पिकनिक पर जाएँगे। यरता और यरा जो होता है ना, चरने के लिए आता है, जिसको आप स्नैकिंग कह सकते हैं आज के दौर में, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सैर में अमूमन बंदा यही करता है इंजॉयमेंट के नाम पे। और जो आपके दिल का शक है तो इन्ना लहू लहाफिज़ून, चर्ब ज़ुबानी। याद रखिए, जो जितना झूठा होता है ना, उसको उतने ही ज़्यादा दावे करने पड़ते हैं। कहने लगे कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, आप फिक्र ना करें, और आप इनको साथ भेज दें। हज़रत याकूब का आप जवाब सुनिए, बड़े समझदार बाप के रूप में। आए 13। قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف. یعقوب نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشے میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اس پہ بھی ڈرتا ہوں کیا ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون کہ کہیں سے بھیڑیا نہ کھا جائے جب کہ تم اس سے غافل ہو. یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کے حزن کا ذکر کر دیا اور حزن کہتے ہی دوسرے کے غم کو ہے, اصل میں یہ ٹالنے کا انداز تھا. لیکن ان کے منہ سے یہ جو بات نکل گئی نا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے جب کہ تم غافل ہو, یہ جملہ ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ بعد میں بھٹوں نے اسی جملے کو دلیل بنا لیا. تو عمل کی بات کیا نکلی کہ دشمن کو کبھی اپنے ویک پوائنٹ نہیں دینے چاہیے. بعد میں وہی جواب کہتے ہیں ہاں وہی ہوا جس کا آپ کو ڈر تھا, ہاں جو آپ نے کہا وہی ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہاں آپ دیکھیے کہ باپ کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے بھی ان کو ذرا اندیشہ نہیں ہو رہا کہ باپ ہمارے پلان کو اگر جان جائے تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے. حضرت یعقوب نے جب یہ بات کہی تو بیٹوں کا جواب سنی آیت 14, قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ, وہ کہنے لگے اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے کھا گیا بچھڑا, انا اذا لخاسرون, ہم تو پھر ایک طاقتور جماعت ہے جو بڑے ہی نکمے ثابت ہوں گے. بار بار آپ دیکھیں کہ ان کو اپنی جماعت پہ اپنے جتھے پہ مانا ہے, یہی مزاج آپ کو بنی اسرائیل میں دکھے گا. ان کو اپنے جتھے پہ ناز تھا, آج ہمیں برادریوں کا ناز ہے. وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہ رہے تھے اس لیے بار بار ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بھائیوں کے ہوتے ہوئے ایک بھائی جو ہے وہ بھیڑیا اس کو کھا جائے, کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے بھائی کی حفاظت نہ کریں. خیر مان گئے. اب دیکھیں کوئی بات نہیں کہ باپ نے کیا کہا, بس ادھر ایک غلطی ہوئی کہ اللہ پہ حوالے کرنے کے بجائے بس ان کو بھیج دیا, کہا ٹھیک ہے لے جاؤ. آیت 15, فلما ذهبوا به واجمعوا, پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے, کہیں یجلوہ فی غیابۃ الجب, کس کو ڈال دیں کسی گہرے کنویں میں, دوبارہ ڈال دیں. یعنی یا اجمعو کے بعد آپ دیکھیں علا کی بات آ رہی ہے نا, تو کس بات پہ, یعنی علا یہاں ہے نہیں لیکن مفہوم دے رہا ہے, یعنی سب اس منصوبے پر متفق ہو گئے, جمع ہو گئے, اتفاق رائے ہو گیا کہ اس کو ڈال دیں. اب وہ ڈال رہے ہیں, لیکن وہ ہی نہ الہی, ہم نے اس کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ ہی کو نیچے لکھیے, یوسف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, ایک دن تم ان کو ان کی حرکت ضرور جتلاؤ گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جبکہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یہ تھا وہ الہام یا خفیہ وحی جو یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالی گئی. ابھی نبوت کی عمر تھی نہیں کہ باقاعدہ وحی آتی, لیکن یہاں بندہ مومن کے دل کی حالت بتائی گئی کہ جب لوگ اس کی جان کے دشمن ہوتے ہیں, اس پہ الزام لگتے ہیں, اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں, اس وقت بھی اللہ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. تمہارے خلاف کوئی بات کرنے والا کیا کرے گا, تم ایک دن اس کو بتاؤ گے کہ تم کتنے سچے تھے. یہاں بڑی گہری بات ہے, ہماری ذات پہ ذرا سی کوئی بات کرے, قتل تو دور کی بات ہے, کنویں میں ہمیں کون ڈالے گا, اس کو تو ایک طرف کر دیجئے. ہم تو ذرا سی اپنے خلاف بات سن کے اگریسو ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی میرے بارے میں بات کی, مجھے سمجھا کیا, کیا میں اتنی بیوقوف ہوں. لیکن اللہ پہ توکل کرنے والے ایسے وقتوں میں خاموش رہتے ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں کہ جو جھوٹا الزام تم نے مجھ پہ لگایا ہے کل میں اس کی تردید تمہارے سامنے کروں گا. اور یہ ہے وہ بات جو اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتی ہے. ہر وقت اگر اپنی ذات کے بت کو ہی پوچھتے رہیں گے نا تو یہ نعمت نہیں ملے گی. سکون دیا, تسلی دی کہ بھائیوں نے جو کرنا ہے کرنے دو, تم فکر نہ کرنا. ادھر تو یہ کر کے آگے باپ کے پاس آتے ہوئے کیا شکلیں بنا رہے ہیں. آیت 16, وَجَاؤَ آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے. شام کو کیوں آئے, صبح میں واپس کیوں نہیں آگے, معاملہ تو صبح ہی ہو گیا تھا. تاکہ رات کے اندھیرے میں چہرے کے تاثرات بدل جائیں. آج بھی دیکھیے فلمیں ہو یا کوئی فکشن ہو, راتوں میں ہی زیادہ قتل, غارت, چوری اور زنا اور بدکاریاں ہوتی ہیں. یعنی رات کے اندھیرے میں گناہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, طبیعتاً بھی اور ماحول کے مطابق بھی. جھوٹا رونا روتے ہوئے آگے, قالوا یا بنا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا, انہوں نے کہا ابا جان ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے اور ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو اپنے سامان کے پاس. یعنی ایکسٹرا سامان چھوڑا اور یوسف کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھے, ہم ذرا ریس کر کے آتے ہیں. فاکلہ الذئب, بس کھا گیا اس کو بھیڑیا, یعنی پورے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. ना हड्डियां छोड़ी, ना उसका गोश्त छोड़ा, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा यूसुफ खाया गया। ममान तभी मोह मिलना, और हमें पता है कि आप हमारे ऊपर इतबार नहीं करेंगे, हमारी बात को मानेंगे नहीं, ये दिल का चोर था। वलौ कुन्ना सादिकीन, हाँ हम कितने ही सच्चे हों, है ना चर्ब जुबानी। वो कहते हैं ना, चोर ऊपर से चलित्र गलत काम भी करते हैं और उसके बाद फिर अपने आप को सच्चा भी करते हैं। सबूत के लिए क्या करके आए? आयत 18 जो आखिरी आयत है सबक की, वजाउ अला कमीस ही बिदमिन कज़िब, और वो इसकी कमीज पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। ये झूठ मूठ का खून क्या था? कहते हैं कि वहाँ वाकई उन्होंने एक कोई जानवर ज़िबा किया और उसका खून जो था यूसुफ की कमीज पे लगा, और कुएं में डालते हुए यूसुफ की कमीज उतार ली, बाप को कुछ तो दिखाना है, और भेड़िए का खून या किसी जानवर का खून लगाया लेके आ गया कि अब्बा जी देख लीजिए। قال بل سولت لكم انفسكم امرا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واقعہ یہ نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بہت بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ بھائی کا قتل مراد ہے، بڑا کام آسان بن گیا۔ کیسے پتہ چلا تم کو کہ یہ جھوٹ ہے؟ کیونکہ قمیص کو خون تو لگایا لیکن پھاڑنا بھول گئے۔ تو یہ کون سا مہذب بھیڑیا تھا جس نے بڑے سلیقے کے ساتھ پہلے قمیض اتاری، پھر اس کو ذبح کیا اور قمیض ان کو دے کے یوسف پورا کھا گیا؟ یہ جھوٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں جھوٹ کے پونی ہوتے، جھوٹ کھل کے رہتا ہے۔ اور وہ نبی بھی تھے، ایک خون کا گھونٹ بھرا، فصبر جمیل، بس اب تو صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ اسے مدد طلب کی جاتی ہے پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کا صبر۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بھی تذکرہ ہے لیکن آگے جا کے ہم اس پہ یا صفحہ پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن صبر جمیل کی تعریف لکھ لیجئے، الصبر لا شکوۃ فیہا، وہ صبر جس میں شکوہ بھی نہ کیا جائے۔ خون کے گھونٹ پی جاؤ اور مسکراؤ اسمائلی فیس کے ساتھ، ہارڈ شپس اور لوگوں کی باتوں کو برداشت کرو، غصے سے تھر تھر کانپنا، رگوں کا پھڑکنا، خون اتر آنا آنکھوں پہ، منہ سے جھاگ نکلنا، اگلے کو غراتے ہوئے پڑھنا، تم نے مجھے یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، اس کو صبر جمیل کیا صبر بھی نہیں کہتے؟ لکھیے ذرا اپنے لیے، سوچئے، پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ اگر یعقوب کی جگہ آپ ہوتی تو کیا کرتی؟ ان بچوں کی ہڈی پسلی ایک نہ کر دیتی؟ 911 کو بلا کے پولیس کے حوالے نہ کرتی؟ یہاں سے یعقوب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت کردار ملتا ہے۔ بڑے سے بڑا اولاد سے غلط کام بھی ہو جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو بیدار کر دے۔ باپ کے ناطے سے اتنا خوبصورت کردار ہمیں نہیں ملتا کہ کیسے انہوں نے اتنی بڑی بات کے باوجود بچوں کو نہ تو خود سے کاٹا، نہ آق کیا، نہ ان کو دھمکیاں دی، بلکہ وقت کا انتظار کیا مناسب رویے پہ۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنے اندر تحمل لانا چاہیے۔ ہر وقت بچوں کو ڈانٹنا، دھمکیاں، جھڑکی، یہ کر دوں گی، ہوگا ہو، وہ کہتے ہیں اماں کی عادت ہے، کرنے دو، کم سے کم بول کے ان کے شعور کو بیدار کرے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ بعد میں یہی بھائی کس طرح پھر اپنے اس جرم پر شرمندہ میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون